أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء أما بعد ہماری بحث شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت آل محمد میں چل رہی ہے اور موضوع گفتگو عدل کلی ہے۔ اس عنوان میں تین بحثیں ہونا کافی اہمیت کی حامل ہیں، ایک عدالت کی تعریف، دوسرا آیا یہ عدالت خواہی انسان کی فطری ہے یا غیر فطری، اور آیا یہ عدل کلی عملی طور پر اجرا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تعریف عدالت اگر عرف میں آپ جا کر دیکھیں تو عدالت کا لفظ اتنا متداول اور رائج ہے کہ کچھ نہ کچھ کنسیپٹ وہ عدالت کا ہر انسان اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ معمولاً جو تعریفیں کی گئی ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ اعطاء ذی حق حقہ، کہ اگر کوئی صاحب حق ہے اس کو اس کا وہی حق عطا کر دینا عدالت کہلاتا ہے۔ مثلا اگر ایک انسان مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کرنے کے بعد اس کا حق ہے کہ اس کی تنخواہ اس کو دی جائے، تو اب وہ تنخواہ دے دینا عدالت کہلاتا ہے۔ اعطاء ذی حق حقہ، صاحب حق کو اس کا حق عطا کر دینا عدالت ہے۔ ایک اور تعبیر کے جو استعمال کی گئی عدالت کی تعریف میں اور روایات بھی موجود ہیں ان اس تعریف کے اوپر، وہ ہے وضع کل شیء موضعہ، ہر چیز کو اس کے مقام پر، جو اس کا اصلی مقام ہے اس پر رکھنا عدالت کہلاتا ہے۔ مثلا اگر ہم اپنی اس بدن کو دیکھیں تو اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ خداوند متعال نے عدالت کی بنیاد پر اس بدن کو خلق کیا ہے، یعنی جس کا جہاں مقام تھا اس کو وہیں رکھا، آنکھ کا مقام یہی تھا جہاں موجود ہے، ناک کا مقام جہاں تھا وہیں پر اس کو رکھا، خوبصورتی بھی اسی لیے پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اگر اس ناک کو کسی اور جگہ رکھ دیا جاتا تو اس کا مقام نہیں تھا وہ، یعنی خداوند متعال انسان کو احسن تخلیق میں خلق کرنا چاہتا تھا، اگر ناک کسی اور جگہ ہوتی تو انسان بدصورت ہوتا اور وہ احسن تخلیق متحقق نہ ہوتی۔ یا اس کے علاوہ بھی آپ مثالیں لے سکتے ہیں، مثلا آپ ایک گھر بناتے ہیں تو گھر کی جس نقشے کے تحت آپ نے بنایا ہے، اگر جس کا جو مقام ہے اس کو وہیں پر رکھ دیا جائے یہ عدالت کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری عرفی مثالیں ہیں، اب اپنی زندگی میں اس کو دیکھیں گے۔ تعریف یہ ہے کہ جس چیز کا جہاں مقام ہے اس جگہ پہ اس کو رکھ دینا یہ عدل کہلاتا ہے۔ مثلا اگر ایک نیک آدمی ہے، اس نیک آدمی کا مقام مثلا جنت ہے، اور برے اور فاسق اور کافر انسان جو ہے اس کا مقام وہ جہنم ہے، تو اب نیک آدمی کو جنت میں ڈالنا اور برے آدمی کو جہنم میں ڈالنا یہ وضع کل شیء موضعہ ہے، ہر چیز کو اس کے مقام میں رکھا گیا اور یہ عدالت ہے۔ بس عدالت کی تعریف واضح ہے۔ دوسری بحث جو یہاں پر ذکر ہے کہ آیا بشر فطرتی طور پر عدالت کو چاہتا ہے، یعنی فطرت میں ہے اس کے کہ وہ عدالت کو چاہے، یا نہ غیر فطری امر ہے یہ۔ سب سے پہلے میں فطری ہونے کو تھوڑا وضاحت کر دوں تاکہ مطلب مزید واضح ہو جائے، اور شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مطلب کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ ایک چیز کا فطری ہونا یعنی کیا مراد ہے۔ اس سے فطری ہونا مراد یہ ہے، مثلا کہا جاتا ہے کہ علم سے محبت ایک فطری امر ہے، کیا مراد یعنی اگر آپ کی روح اور یہ بدن فقط موجود ہوں और किसी किस्म का कोई आमिल खारजी तौर पर आपके पास ना आए। आप जब इल्म को देखते हैं, इल्म का हुसूल करते हैं, तो आप उसको कमाल पाते हैं। यानी किसी ने आकर आपको नहीं कहा कि इल्म से मोहब्बत करो, किसी ने आपको मजबूर नहीं किया कि आप इल्म से मोहब्बत करो, बल्कि जैसे ही इल्म से आशनाई इंसान की होती है, इंसान उसका आशिक हो जाता है, उससे मोहब्बत करता है इल्म को, और उसके हुसूल के लिए कोशिश करता है। ये इल्म का हुसूल इंसान का फितरती है, इल्म से मोहब्बत जो है वो फितरती है, क्योंकि खारिज में कोई नहीं आया उसको मजबूर करने के लिए तुम इल्म से मोहब्बत करो। तो अदालत भी इसी तरीके से है। अदालत का फितरी होना मुराद ये है कि अगर बशर को कोई मजबूर ना भी करे, अगर बशर को कोई मुतवज्जे ना भी करे, अगर बशर को कोई हुक्म ना भी दे, तब भी अदालत के हुसूल के लिए वो कोशिश करेगा। अदालत को अच्छा समझता है और अदालत के कयाम को ज़रूरी समझता है। तो ये अदालत खाही एक फितरती अमर है। इंसान के अंदर एक ऐसी कुव्वत रखी गई है कि जो कुव्वत खाहा है इस चीज़ की कि अदालत होनी चाहिए। जिस तरीके से इंसान एक इंतहाई खूबसूरत मंजर को देखता है तो उसको बहुत खुशी हासिल होती है, और ये खुशी उस कुव्वत की वजह से है कि जो उसके अंदर मौजूद है, कि जो खूबसूरत मंजर देखने के बाद खुद ब खुद इस खुशी का इजहार करती है। तो अदालत खाही इसी तरीके से इंसान की फितरत में, इंसान के नफ्स में, इंसान की रूह में रखती गई है। यह है अदालत का फितरी होना। अब सवाल यह होता है कि आया वाकयान अदालत फितरी है या नहीं है। इसमें मुख्तलिफ नजरिए हैं, मुख्तलिफ फैलसूफ मैदान में आए, फलासफा सामने आए, उन्होंने अपनी बसात के मुताबिक, अपनी एक आइडियालॉजी के मुताबिक, के जो पहले से वो अपने जहन में रखते थे, उसके मुताबिक नज़रिए बयान किए। पहला नज़रिया जो शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह जिक्र करते हैं, वो नक्शे और मिखियावली का नज़रिया है। इनका कहना ये है कि इंसान के अंदर कोई ऐसी कुव्वत रखी नहीं गई है कि जो अदालत को चाहे। यानी क्या मुराद? यानी फितरती नहीं है। इंसान जाती तौर पर अदालत का खाहां नहीं है, बल्कि यह अदालत का मफहूम ज़ईफ लोगों ने इख्तिरा व ईजाद किया है। वाइल अदालत नाम की चीज नहीं है यहां पर। ज़ईफ लोगों ने जब देखा कि कवी लोग उनका हक उनको अता नहीं कर रहे, उन पर जुल्म करते हैं, हक होने के बावजूद उनको अता नहीं किया जाता, उन्होंने फिर यह मफहूम ईजाद किया कि इंसान को आदिल होना चाहिए। बस ये अदालत का जो मफहूम है, फिक्र है, नजरिया है, ये ज़ईफ लोगों की इख्तिरा है। ये पहला नजरिया। दूसरा नजरिया जो शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह यहां जिक्र फरमाते हैं, वो है रसल का नजरिया। रसल ये कहता है कि मैं मिखियावली और नक्शे की तरह ये नहीं कहना चाहता कि अदालत की तरफ ना जाओ। अदालत है ही नहीं है, अदालत इख्तिरा है ज़ईफ लोगों की। मेरा नज़रिया ये है, रसल कहता है कि अदालत की तरफ जाना ज़रूरी है, लेकिन ये अदालत को चाहना और उसकी तरफ जाना जो है, ये इंसान की वजह से नहीं है, उसकी फितरत की वजह से नहीं है, बल्कि इस वजह से है कि इंसान चूंकि जाती तौर पर मनफात परस्त है, अपनी मनफात को चाहता है जहां भी उसको मिलती है, तो अब ये फर्दी जो मनफात है ये अदालत में पोशीदा है। यानी अगर मुआशरे में अदालत मौजूद होगी तो इस इंसान को अपना हक मिलेगा, अपनी मनफात को हासिल कर सकेगा। लेकिन अगर ये अदालत की तरफ ना गया, यानी सोसाइटी के अंदर जामे व मुआशरे के अंदर अदालत ना कायम की गई, तो ये शख्स अपनी मनफात फर्दी जो हासिल करना चाहता था उसको भी हासिल नहीं कर सकेगा। मसलन मिसाल देते हैं उसकी, आप और आपका हमसाया इकट्ठे जिंदगी गुजार रहे हैं, करीब घर हैं, एक ही दीवार है आपके घर की, मामूलन घर ऐसे ही हैं, मसलन जब एक एक साथ मिलकर घर बनते हैं तो एक दीवार जो है उसमें मुश्तरक होती है। अब अगर आप चाहते हैं कि हमसाया मेरे हक का ख्याल रखे, मेरे सुकून का ख्याल रखे, मेरे मुतालबात का ख्याल रखे, तो ज़रूरी है कि आप भी उसके हकूक़ का ख्याल रखें। अगर आप उसके हक का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो भी आपके हक का ख्याल नहीं रखेगा, तो इस तरीके से आप अपनी मनफत तक नहीं पहुंचेंगे। तो लिहाजा अगर मुआशरा मिलकर एक दूसरे के हकूक का ख्याल नहीं रखेगा तो कोई भी बंदा अपने हक जो उसके साथ खास है उसको भी हासिल नहीं कर सकेगा। तो रसूल कहता है अदालत खूब है, अदालत की तरफ जाना जरूरी है, लेकिन ना इस वजह से कि ये चाहना जो है वो फितरी है, बल्कि इस वजह से चूंकि इसकी मनफात फर्दी जो है ये अदालत के अंदर पोशीदा है। इस नजरिए के ऊपर एक मुहिम नकद ये किया जा सकता है, अहम तरीन नकद ये किया जा सकता है कि एक दूसरे का हुकूक उस वक्त इंसान रियायत करेगा कि जब मसलन मुझे मालूम होगा कि मैं अपने हमसाये से ज़ईफ़ हूँ, अगर मैंने उसके हक की पामाली की, चूंकि वो ताकतवर है वो मेरे हक की पामाली भी करेगा, या मसलन मेरी और उसकी ताकत एक जैसी है, अगर मैं उसके हक के पामाल करूंगा तो उसके अंदर भी कुव्वत मौजूद है कि वो मेरे हक को पामाल करे, तो लिहाजा चूंकि मैं ज़ईफ़ हूं या मेरी ताकत उसके बराबर है, ये इस मोरद में, इस सूरत में तो अदालत का मफहूम मुतहक्किक हो सकता है। लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरी ताकत ज्यादा है हमसाये की ताकत से, तो कौन इंसान है कि जो दूसरे के हकूक की रियायत करेगा, वो हक को, उसके हक को पामाल करेगा, क्यों? उसको पता है कि ये मेरे हक को पामाल नहीं कर सकता क्योंकि वो ज़ईफ़ है। बस ये कह देना, ये नजरिया दे देना कि अगर आप अपनी मनफात तक पहुंचना चाहते हैं तो अदालत का ख्याल रखें क्योंकि अदालत के अंदर आपकी मनफात पोशीदा है, ये उस सूरत में है कि जब इंसान या तो ज़ईफ़ हो या उसकी ताकत दूसरों के साथ बराबर हो। लेकिन अगर जिसकी ताकत जो है वो कवी होगी तो वो कभी भी दूसरों के हक की रियायत नहीं करेगा, तो अदालत मुतहक्किक नहीं हो सकती। बस ये रसल का नज़रिया जो है वो बातिल है। तीसरा नज़रिया जो यहाँ पर जिक्र करते हैं वो मार्क्सिज्म का नज़रिया है। मार्क्सिज्म का नज़रिया ये है कि अदालत को इंसान हासिल कर ही नहीं सकता, यानी इंसान के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो इस अदालत को हासिल कर सके। चाहे आप उसको ऐसी तरबियत करें कि जिस तरबियत का नतीजा ये निकले कि वो अदालत को चाहे, या उसके इल्म और अकल को इतना बुलंद कर दें कि वो जब अदालत की अच्छाई को जान जाएगा तो खुद तलब करेगा, हर दो सूरत के अंदर नहीं हो सकता। मसलन रसूल यही कहता था कि अगर इंसान को इल्म दे दिया जाए कि तुम्हारी मनफत पोशीदा है दूसरों के मनफत के ख्याल रखने में, तो वो अदालत से काम लेगा। मार्क्सिज्म कहती है कि नहीं, इंसान में असलन ताकत नहीं है आदल को बरकरार करने की, बल्कि क्या है, इक्तसादी अबजार के जरिए जो है वो अदालत कायम की जा सकती है। मुआशरा खुद ब खुद हालात के तकाजों के तहत हरकत करता है और यह हरकत करता सरमायादारी निजाम तक पहुंचता है और फिर यहां से हरकत करता हुआ सोशलिज्म की तरफ जाता है, और जब इंसान इस सोशलिज्म तक पहुंचता है तो यह निजाम फिर जबरी तौर पर अदालत को मुतहक्किक करता है। तो बस निजाम सोशलिज्म है कि जिसने अदालत को मुतहक्किक किया, ना कि खुद इंसान ने, असलन इंसान में यह ताकत मौजूद नहीं है। इसके ऊपर भी नक जो है वो इसके उन फर्जिए के ऊपर मौजूद है जो इन्होंने कायम किया हुआ है कि इक्तिसादी पेशरफ्त हो, उसमें सरमायादारी निज़ाम है, सोशलिज्म निज़ाम है, इनके ऊपर जो नकद किए गए हैं अगर उनको रद्द कर दिया जाए और जो सिस्टम इन्होंने कायम किया है इक्तिसादी एतबार से मार्क्सिज्म का, अगर उसको रद्द कर दिया जाए तो ये नज़रिया भी बातिल हो जाता है। चौथा नज़रिया जो है वो इस्लाम का नज़रिया है। इस्लाम का नज़रिया ये है कि इंसान फितरती तौर पर अदालत खा है। इंसान अगर इंसान हो और कोई आमिल खारजी उसके अंदर आकर तासीर ना करे, शहवतें उस पर गलबा ना करें, उसकी फितरत गुबार आलूद ना हो, तो ये हमेशा अदालत को चाहेगा। अगर कोई इंसान अदालत नहीं चाहता इस वजह से, चूंकि उसकी फितरत मरीज हो चुकी है, उसकी फितरत किसी गुबार के तहत दब चुकी है, फितरत को साफ करते ही वो इंसान अपनी फितरत के जरिए अदालत को चाहेगा। शेख मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह एक मिसाल जिक्र करते हैं, कहते हैं कि अगर आप अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी को मद्देनजर रखें तो आपको ये नजर आएगा कि वो पूरी जिंदगी अदालत के खां थे। उन्होंने अदालत को इसलिए तलब नहीं किया था चूंकि उनकी मनफअत जो है वो अदालत के अंदर पोशीदा है, बल्कि जब अदालत कायम करना चाहते हैं उनकी मनफअत फर्दी जो है वो हासिल नहीं हो रही है, लोग मुखालिफ हो रहे हैं उनके, लोग अजियतें कर रहे हैं उनको, लेकिन फिर भी हर सूरत में अदालत को इकामा करने की सोची, उन्होंने अदालत को कायम करने का इकदाम किया। लिहाजा शिमतार फरमाते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी ऐसी जिंदगी है कि जिसने तमाम गर्बी नज़रियात को धर्म बरम करके रख दिया है। बस इस्लाम का नज़रिया फितरती अदालत है, यानी अदालत को फितरत के तौर पर चाहा जाता है, ना कि किसी मजबूरी की वजह से। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।